बीसवां पारा अल्लाह तआला की कुदरत के दलाइल से मुशरिकीन के रद्द से शुरू होता है। इसका जो मेन थीम है ना इस पारे का, जिसके ऊपर आपने मैंने बात करनी है, अल गरूर के धोखे। अल गरूर कौन है? शैतान। जैसे अल्लाह तआला के बहुत सारे नाम अल के साथ है ना, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, इस तरह शैतान के नामों में से एक नाम अल के साथ गुरूर। और गर्र या गुर्रु गरूर, तो एक तो था ना मगरूर, गुरूर कहते हैं धोखा देने वाला, धोखेबाज के धोखे। और धोखों में से जो बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ दुनिया में लगा हुआ है वो क्या है, इस दुनिया की हकीकत को नहीं जानते। तो इस पारे के अंदर आपको मुझे रिंग रोड ऑफ दुनिया दिखेगी, जिंदगी का उतार चढ़ाव, लाइफ साइकिल, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। दुनिया क्या है? आप में से कोई लाहौर अगर गया हो पिछले 8-10 साल से, लाहौर में बहुत ट्रैफिक था, अभी भी बहुत है, लेकिन एक अच्छा काम जो पिछले 10 सालों में हुआ वो क्या था कि उसके अंदर एक रिंग रोड बन गई है। पूरे लाहौर के इर्द गिर्द से उसको गुजारा के अंदर गलियों, कूचों में, इलाकों में जाए बगैर बाहर से जाओ, और उसको पूरे शहर से ना एग्जिट दे दिए। अब उससे क्या हुआ, सफर कम हो गया, फासला ज्यादा हो गया, लेकिन रास्ते के वो जो हिकअप्स थे ना वो खत्म हो गए। लिखिए, अल्लाह सुबहाना तआला ने इस दुनिया को जिस तरीके से प्लान किया है ना, अगर तो आप इस दुनिया की अंदर की गलियां कूचे इसमें घुस गए ना, तो आपका वक्त आया होगा। इस दुनिया में रहते हुए दी बेस्ट वे क्या है कि इसके रिंग रोड पे रहिए। दुनिया आपके बाहर बाहर है और आप इससे फायदा उठा के निकल जाए। जिसने पाँव डाल दिए दुनिया में, अब इसको मिसाल से लीजिए, एक समंदर, दरिया, पानी का कोई भी मजमुआ, उस पानी के मजमुए के अंदर अगर आप किनारे पे बैठे रहेंगे तो ठीक है, यानी दुनिया के किनारों पे रहो। जिसने इस दुनिया के अंदर 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 जाने की कोशिश की वो डूब जाएगा, बल्कि इंडल्ज हो जाएगा। आज ये दुनिया हमारी जरूरत है, रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, शादियां होंगी, बच्चे होंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, ईदें आएंगी, बिस्मिल्लाह, कोई मना नहीं करता, बट अल्लाह कहते हैं दुनिया के किनारों पर रहो। आपने 70वें पारे में एक आयत पढ़ी थी ना कि वह मिन नासि मै याबुदुल्लाह अला हरफिन, आज की बात इसका बिल्कुल अपोजिट है। वहां क्या कहा कि एक बंदा मुनाफिक ऐसा भी होता है जो दीन के किनारों पे रहता है, और अगर खैर पहुंचे दीन में तो अंदर जा रहा होता है, जरा ले आऊं मैं भी कुछ पैकेट फ्री के उठा लूं दीन के, और अगर दीन के कोई तकाजे, कोई लाइबिलिटीज, कोई प्रॉब्लम आए तो वो वहीं से चला जाता है, नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ, किनारे पे रहा ना। अल्लाह कहते हैं कि असल में दुनिया के किनारों पे रहो, दीन में अंदर हो, उदखुलु फिस्सिल्मी काफा, दीन के तो बिल्कुल अंदर आके देखो फिर दीन तुम्हें कितना खूबसूरत लगता है। जैसे पिज्जे का सबसे मजे का हिस्सा कौन सा होता है? जो अंदर का होता है, जो अंदर का हिस्सा होता है ना वो टेस्टी होता है। पराठा भी अंदर वाला पीस, आप मूली वाला, आलू वाला पराठा खाएं, आखिरी बाइट का बड़ा इंतजार होता है। तो दुनिया में जीने का आज आपको राज मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट इस पारे के साथ मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, ये भी बता दूँ, पिछले किसी दौरे कुरान में इस एंगल से नहीं दिया, और बहुत एंगल दिए। वही बचेगा जो दुनिया के किनारों पर रहकर ज़रूरतें पूरी करे, खर्च अखराजात ज़रूरत का करे, घर ज़रूरत का बनाए, कपड़ा लत्ता ज़रूरत का बनाए। आज एक लाइफ साइकिल देखें आप, पूरा सर्कल होता है ना, उसमें अगर आप ये कहते हैं ना कि इस दुनिया में मैं परफेक्शनिस्ट हो जाऊं, मैं इस दुनिया का दी बेस्ट ले लूं, डूब जाएंगे। बादाम जेन में लाइए, अंदर गिरी है ना, पैर छिलका, छिलका खाता कोई नहीं है, लेकिन वो प्रोटेक्शन होती है, असल अंदर बादाम है। अल्लाह ने आखरत के बादाम को, नट को, कोई भी नट ले लें, अखरोट ले लीजिए, चले और भी अच्छा लगेगा, आखरत के अखरोट को दुनिया के छिलके में छुपा दिया। आप दुनिया का छिलका आहिस्ता 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 उसको खोलते जाएं, अंदर आखरत मिलेगी। जो लोग दुनिया का नट लेना चाह रहे होते हैं ना वो डूब जाते हैं। ये है इस पारे में, बाकी बात आयतों के साथ चलेंगी। पारे की जरा सी झलकियां देख लेते हैं। पारे के शुरू में अम्मन खलक समावाती वल अर्ज़ से कुछ सवालात उठाए गए, कुदरत बारी ताला के दलाइल हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का तौहीद रबूबियत को मानते थे, तौहीद अलूहियत को नहीं मानते थे, यानी अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे, हाँ लेकिन रब मानते थे कि उसने इस दुनिया को पैदा किया। फिर इसके बाद नबी सल्लम को कुछ तसल्लियाँ मिल रही हैं, खातम नबीयीन को तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि आप इनको नहीं सुनवा सकते, ये तो गूंगे बहरे हो गए हैं, बस आप अपना काम कर दें तो चलते जाएं। फिर उसके बाद अलामत कुबरा में से एक बड़ी अलामत, वो क्या है कि ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जिसको दाबतुल अर्ज़ कहते हैं, तो वो आपको सूरत नमल की आयत नंबर 82 में मिलेगा। उसके बाद इस पूरे पारे की जो जान है ना, वो सूरत कसस है। इसमें नबी सल्लम की रिसालत का जिक्र है, आपकी रिसालत पर होने वाले इतराजात का जिक्र इसमें भी मौजूद है, और ये सूरत शुरू से लेके 43 आयत तक हजरत मूसा की सीरत है। स्टेप बाय स्टेप तरतीब से हजरत मूसा की जिंदगी पढ़नी हो तो सूरत कसस पढ़िए, जिसमें आपका किस्सा है शुरू में आयत 3 में, फिर उम्मे मूसा की तरफ पैगाम में खुदाबंदी, माँ को भी अल्लाह ने कैसे आजमा लिया एक न्यू बॉर्न बेबी से, फिर किबती का कत्ल जो मूसा के हाथ से हुआ आयत 15 में उसका जिक्र है, फिर एक खैर ख्वाह आ गया अल्लाह अंधेरों में रोशनी निकाल देता है आयत 20 में, फिर नबी सल्लम की हिजरत का सफर यानी मिस्र से मदियन रवानगी आयत 23 में, फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत थी आयत 25 से ऑनवर्ड के मेरी किसी बेटी से निकाह कर लो, फिर मुआहदा और निकाह की पेशकश है 27 आयत में, और इसी तरह से हजरत मूसा की मिस्र वापसी और फिर वापसी में आपको नबूवत का मिलना ये आयत 29 और ऑनवर्ड है, और आखिर में फिर नबी सल्लम की नबूवत के दलाइल हैं, और दोहरा अजर उन लोगों के लिए आयत 52 में जो के अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हैं। अल्लाह ताला मुख्तारे कुल है इसका तस्करा, और फिर आखिर में वो जो पारे का हमारा अमूद है ना, कारून का किस्सा और उसका अंजाम। दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स समझने वाला खुद को किस अंजाम से दोचार हुआ, फिर अल्लाह ताला के एक वादे का जिक्र आयत 85 में, और फिर एंड में कुछ आयतें सूरत अनकबूत की, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ दुखी लोगों की सूरत। मक्का के उस दौर में ये नाजिल हुई थी जहाँ जगह जगह परसिक्यूशन हो रहा था, टॉर्चर, पत्थर, कांटे, कोयले, ये मुसलमानों के लिए तैयार थे, इधर कलमा पढ़ो तो उधर तुम्हें हम आजमाएं। अल्लाह ने इस सूरत में मकड़ी का जिक्र करके मुशरिकीन के सारे जाल को, मकड़ी के जाले जिसको वेब कहते हैं आप, आज आज वेब भी तो वही है ना, आज इस वेब ने दुनिया में क्या हलचल नहीं मचा दी, क्या कुछ हो रहा है ये आप सबको अंदाजा है, कुछ नहीं है तो वक्त के साथ आपको खुद ही पता लग जाएगा। आज हमारी नस्लों के इर्द गिर्द एक पूरा वेब है, उनके दिमागों को कंट्रोल में करने का और पूरा प्लान है, तो अल्लाह ताला ने इस मक्की सूरत में तौहीद, रिसालत, कियामत के बयान करके फिर कौमों के कुछ किस्से हैं, उन सारे किस्सों का मकसद नबी सल्लम और उस दौर के ईमान वालों को तसलियाँ देना है कि ईमान वालों पर पहले आजमाइशें आती हैं फिर आसानियाँ आती हैं। ये लिख लें, जब भी नया नया कुरान कबूल करेंगे ना, पहले आप पे आजमाइशें आएंगी फिर आसानी आएंगी, फइन्नमल उसरी युसरा। फिर इसमें वालदैन की इताअत और फरमा बरदारी के लिए एक बड़ा बैलेंस रवैया दिया गया, क्योंकि अक्सर नेक लोग अपने माँ बाप के बारे में परेशान होते हैं कि इनको कैसे खुश करें क्योंकि इन्होंने नहीं होना, और ख़ास तौर पर जब कुफर और इस्लाम या दीन और बेदीनी का ताल्लुक है, क्या करें ऐसे माँ बाप को, तो उसका तذकरा है। और इसी सूरत में आपको हिजरत के इशारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मक्की दौर के उस नहज पे थी कि अब मक्का वालों के जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं किए जा रहे, निकल जाओ इधर से, इनको छोड़ो, इनके हाल में अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। मोमिनीन पर आजमाइशों से ये बात शुरू करती है, खसिबन नास युतरकु यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, आयत 8 में वालदैन के साथ हुस्ने सलूक है, आखरत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा आयत 12 में है, हजरत नूह का किस्सा शुरू होता है आयत नंबर 14 में, और उसके बाद फिर पिछली उम्मतों के इंजाम के साथ साथ मुशरिक की मिसाल देकर इस पारे को पूरा किया जा रहा है। अब आप और मैं जरा सा तर्जमे के साथ साथ रहते हुए देखेंगे कि इसमें से आज हमारे नसीब में क्या है। दुआ करते हैं अल्लाह तआला हर किस्म के रखने से बचाते हुए पूरा इंजॉय करके इसको पढ़ाने और आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पिछले पारे के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको अब इसके अंदर रिलेट करते हुए महसूस करेंगे कि किस तरीके से कुरान एक लड़ी में पिरोया हुआ है, शैतान पीछे है, दुनिया के इस जंगल से अपने आप को बचाना है। पिछले पारे के अंदर दो ऐसे नबियों का जिक्र था जिनको दुनिया की दौलत बहुत मिली, इस पारे से रब्त क्या है कि अगर किसी को सुलेमान जितनी दौलत और अथॉरिटी और इख्तियार क्यों ना मिल जाए कि जिन्नों पे कब्जा, तो चिड़ियों की बोलियां जानते हैं, और हजरत दाऊद जैसी हाकिमाना पोजीशन क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर वो अल्लाह से डरता होगा, अल्लाह का खौफ रखता होगा, तो उसका माल उसको नुकसान नहीं देगा। यानी इस पूरे पारे में माल की बातें हैं, बल्कि आप कह ले पैसे वालों के लिए ये पारा है, क्योंकि वो परेशान होते हैं कई दफा कि हम माल के साथ क्या करें, क्या हमारा माल हमें जहन्नुम में ले जाएगा। नहीं, माल तो अपनी जगह माल है, माल यमील उमैलन, दिल झुकता है, मेलान होता है इस तरफ, में गाइडलाइन मिलेगी कि अल्लाह की दी हुई नेमतें बंदे को नुकसान नहीं देती। कब? जब बंदा खुद अल्लाह से जुड़ा हो, फिर वो ये कहता है अल्लाह मैं भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरा घर भी तेरा, मेरी गाड़ी भी तेरी, मेरा सेलफोन भी तेरा, और सो ऑन, और तेरी दी हुई नेमतों को मिम्मा रजक ना हम युनफिकून की सूरत में तेरे रास्ते में ही खपा दूँ, तेरे ही बंदों के साथ इसको जोड़ दूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे। और यही कॉन्सेप्ट है। हम ये जो अपने माल पे सांप बन के बैठ जाते हैं ना, फिर उसको लॉक्स में रख के, उस पे पासवर्ड्स लगा के, फिर उसको जमा तफरीके करके टैक्स चोरी करते, फिर जकात भी चुराने की कोशिश करते, ये जुर्म है। अदरवाइज अब्दुलरहमान बिन आप पैसे वाले थे, जन्नत में चले जाएंगे, देखिएगा अपनी सदके खैरातों की वजह से। उस्मान फिल जन्ना 9 दफ़ा अल्लाह के नबी ने ये बात कह दी तबुक के मौके पे। अबू बकर की सिद्दीकिया देख लीजिए, घर का माल उठाकर मक्का से मदीना चले गए, है ना। तो ये सारी चीजों को समझिए, और आज के दौर में ऐसे मुबल्लिगीन की बहुत जरूरत है जो लोगों को गिल्ट से निकालें। एक्सट्रीम पे तबलीग हुई पिछले 20-25 सालों में, बल्कि उससे भी ज्यादा, पैसे वालों को एक गिल्ट दे दिया और गरीबों को एक मजलूमियत का नुक्ता बनाकर जन्नती बना दिया। ना पैसे वाला जरूरी है कि जहन्नुम में जाएगा, और ना गरीब सिर्फ जन्नत में जाएगा, ये कोई मेयार नहीं है। पैसा वाला होना ना खुशकिस्मती है ना बदबख्ती है, हकीकत है। गरीब होना ना बदबख्ती है ना खुशबख्ती, एक हकीकत है, एक्सेप्ट इट। हर एक को ये कहा गया कि जो आपके पास है आप उसके मुताबिक चलिए। अब कुरान की आयतों से आपने इसको रिलेट करना है। सूरत नमल की आयत 60 से 93 इसके शुरू में आ रही है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मन खलक़ समावाती वल अर्द। जरा से ना इस क्वेश्चनिंग स्टाइल को देखिए, ये आज के दौर का लेटेस्ट तरीका तालीम है, वेस्ट में भी। इसको कहते हैं सवाल उठाना और अगले के शऊर को बेदार करना, क्वेश्चन आंसर QA सेशन। देखिएगा, भला बताओ तो कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर इसे हरे भरे बारौनक बागात उगाए, इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज ना उगा सकते, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है, बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से, क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया और इसके दरमियान नहरें जारी कर दी और इसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान रोक बना दी, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है, बल्कि इनमें से अक्सर को जानते ही नहीं। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाहू व यक्षिफुस्सू, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है? जवाब दीजिए, है कोई करने वाला? है कोई दस्तगीर मुश्किल कुशा? सिर्फ अल्लाह। और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के सिवा और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। अम्मा यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी राहों से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिन्हें ये शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह बुलंदो बालातर है, क्या वो जो मखलूक की अव्वल दफा पैदाइश करता है फिर इसे लौटाएगा, और जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजियां दे रहा है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ, कह दीजिए कि आसमान वालों में से जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह तला के कोई गैब नहीं जानता, इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़े किए जाएंगे, बल दार का इल्म हो फिल आखिरा, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये इससे अंधे हैं। टोन को महसूस कीजिए, ये प्रॉब्लम है। जब दुनिया भर जाती है ना, तो आखिरत पीछे चली जाती, भूली बिसरी। ऐसे जैसे ड्रॉ में आप बहुत सारी चीजें डाल देना, तो कई बड़ी अहम चीजें पीछे छुप जाती हैं। पेंट्रीज लोगों की देखें, हजारों चीजें होती हैं लेकिन मिलती नहीं वक्त पे, क्योंकि बेकार चीजें आ गई क्लॉजेट में, आपने बेकार चीजें भर दी। जब दिमाग के क्लॉजेट में दुनिया फिक्शन ये भरता है ना, तो लगता है इनका इल्म तो आखरत का बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनको आखरत की फिक्र ही नहीं है। असल मसला ये है, दुनिया जो है वो बुरी नहीं है, बट इसकी एक आदत है, जितनी दुनिया हमारे पास आती है ना, ये आखरत को किक आउट कर देती है। बहुत डोमिनेटिंग है दुनिया, चिल्लाक है, होशियार है, डिक्टेटर टाइप की कैफियत है, मोनोपोली चाहती है, वो कहती है सब कुछ मेरा लो, सब कुछ मुझे समझो। अब थोड़ा सा आखरत को अंदर घुसेड़ते हैं ना, वो फिर उंगली डाल के कोनी मार के आखरत को पीछे कर देती है। और इस स्ट्रगल में इंसान कई दफा ये सोचता है कि जब दुनिया इतनी है तो आखरत कहाँ होगी। वो कहते हैं ना कि बाबर बैश कोश के जहाँ दोबारा नीस्त, बाबर ऐश कर लीजिए ये दुनिया दोबारा नहीं बननी, इन आयतों को समझिए। बंदा अंधा बन के नहीं दुनिया के पीछे भागता, हलाल से मिले, हराम से मिले, जायज से मिले, नजायज से मिले, तबीयत खराब होती है तो हो, रातें जाग रहे हैं तो जाके कमा रहे हैं कमा रहे हैं, नमाजें मस्जिद की जा रही हैं कि सो के, क्या करें। अब मसला है पैसे बन जाए, पैसे बन क्यों, पैसे पीछे भेजने हैं। मैं अक्सर टैक्सी वाले ब्रदर्स को देखती हूँ, 90% मुझे तो लोग पाकिस्तानी दिखते हैं वहाँ ना, तो मैं अक्सर बैठती हूँ तो बात करती हूँ इनके साथ भी कि इस बेचारे ने रात दिन टैक्सी चला के फिर ये पैसे पाकिस्तान भेजने हैं, जहाँ पहले से कई बिल चढ़े होने हैं, घी वाले का बिल जे, दूध वाले का बिल जे, और इस भाई ने सारा महीना पता नहीं कितनी दफा सब्र करना है, और पाकिस्तान वालों ने क्या कहना है, बाहर से पैसे आए हैं, वो लुटा दे, वो खा ले, वो खिला दे, हर रिश्तेदार की नजर भी होगी कि बाहर गया जी हमारा भाई, हमें कुछ भेजेगा। ये कल्चरल बात की है मैंने, हर एक के लिए जरूरी नहीं ये सेट हो, लेकिन कितना हांफते हैं हम दुनिया पर कमाने में और उसको उजाड़ने में। इस पारे का मौजू दुनिया कमाना नहीं है, खर्च करना, फ्लॉन्ट करना, बतर रिया जैसे कारून ने किया था। तो दुनिया जो आए ना हलाल से शुक्र कीजिए, आपके शौहर की जितनी पे है ना सब्र शुक्र से उसी में चलिए, चादर देखकर पांव फैलाओ, ये जुमला है आपके लिए मरकजी मजमून में, चादर देखकर पांव फैलाओ, जिस पारे के मेन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। वकाल लसीना कफरू, कुफार ने कहा क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, क्या हम फिर निकाले जाएंगे। ये दूसरा जुर्म है दुनिया का, कि ये ख्याल भूल जाता है कि हम मरने के बाद जिंदा होंगे, क्योंकि सब कुछ तो सामने ही दिख रहा होता है ना, और पिछले गए हुए तो वापस कभी आए ही नहीं ना आएंगे। हम और हमारे बाप दादाओं को बहुत पहले से ये वादे दिए जाते रहे, कुछ नहीं ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं, कह दीजिए कि जमीन में चल फिर कर जरा देखो तो सही, गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ, आप इनके बारे में गम ना करें और इनके दाव घात से तंग दिल ना हो। वह यकूलू न मता हाजल वादु इन कुंतुम सादिकीन, कहते हैं कि ये वादा कब है, अगर सच्चे हो तो बतलाओ, जवाब दीजिए कि शायद बाज वो चीजें जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो तुमसे बहुत ही करीब आ गई हो, यानी अजाब या आखरत क्यामत। यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फजल वाला है, वला किन अक्सर हम ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग ना शुक्री करते हैं। बेशक आपका रब इन चीजों को भी जानता है जिन्हें इनके सीने छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं। आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में ना हो, फी किताब मुबीन लोहे महफूज। अल्लाह सुबहाना ताला ने हर चीज़ को उसमें महफूज कर दिया, ये रिकॉर्ड कीपिंग दफ्तर है। हम किस चीज़ को लिख कर रखते हैं, जिसका हिसाब रखना होता है। आज हमारा अमूमन एक गम है, इस बारे के थीम के साथ ज़रा से लेके चलिएगा, हम खर्च क्यों करते हैं ज़्यादा लोगों को खुश करने के लिए। मेहमान के आने पे एक चीज़ से गुजारा हो सकता था, आप कर सकते हैं तो दो कर लें ताकि मेहमान को कुछ इज्जत दे दें। हदीस भी है, हुक्म भी है कि मेहमान के आने पे दस्तरखान खुला कर लो, पहला खाना जिसको नुजुल कहते हैं आम से अच्छा बना लो। लेकिन हम एक नहीं दो नहीं 10 खाने बनाते हैं, जिसमें 3 आइटम खाने के, 4 उसके, फलाम मीठे के, सैलड के, क्यों कि लोग खुश हों। और अगर कोई कहता है बेगम बस एक खाना बनेगा, आपके मैके वाले आ रहे हैं ना एक खाना बनेगा, फुला आपकी दोस्तें आ रही है ना एक खाना बने, तो आगे से आप क्या कहती हैं, लोग क्या कहेंगे, घर से बुलाया तो एक खाना खिलाया, अच्छा घर में थी दाल मेहमान आ रहे हैं, आप उनको कहती हैं आइए खाना खा के जाइए, तो जब देखा ना सिर्फ दाल पतली सी और रोटियां आई तो कहेंगे लो दाल ही खिलानी थी, इतना इसरार करके रोका क्यों? लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को इस पारे के साथ आप खुरच दें। इस पे एक बहुत ही प्यारा कॉल है मोहम्मद बिन असलम तुसी का, कहते हैं कि भला मेरा लोगों से क्या ताल्लुक, मैं अपने वालिद के सुलब में अकेला था, यानी दुनिया में आने से पहले, मिन बैनि सुलबी वत्तराइब सूरह तारक में आता है, फिर मैं अपनी माँ के पेट में अकेला था यानी नुतफा बन के, फिर मैं दुनिया में आया तो अकेला था, फिर मेरी रूह कब्ज की जाएगी तो मैं अकेला होऊंगा, फिर मैं अपनी कब्र में दाखिल होऊंगा तो अकेला होऊंगा, फिर मुनकर और नकीर आएंगे और मुझ अकेले से मेरी कब्र में सवाल करेंगे, फिर अगर मैं खैर की तरफ गया तो अकेला जाऊंगा, और अगर शर की तरफ गया तो अकेला होऊंगा, फिर मैं अल्लाह तआला के सामने अकेला खड़ा होऊंगा, फिर मेरे आमाल और गुनाह मेरे मीजान में अकेले रखे जाएंगे, फिर अगर मैं जन्नत की तरफ भेजा गया तो अकेला भेजा जाऊंगा, और अगर जहन्नम की तरफ भेजा गया तो मैं अकेला भेजा जाऊंगा, तो मेरा भला लोगों से क्या ताल्लुक। ये खिलियतुल औलिया किताब है और उसमें आप एक और भी हवाला लिखा हुआ पढ़ लीजिए, कितनी बड़ी हकीकत है। और किसी भी मुल्क की अच्छाई बुराई मकसूद नहीं होती, हकीकत का इजहार और इस्लाह मकसूद है। अपने बैक होम में जब भी गई यही देखा है कि हम अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं, लोगों की बातों का डर हमें कई दफा मकरूज बना देता है। कर्जे लेके हमारे पास कुछ लोगों के फॉर्म्स कभी आते हैं ना तो कहते हैं बेटी की शादी है खाने का खर्चा नहीं है कर्ज दे दें। भी बेटी की शादी पे खर्चा कौन करता है, बेटी की शादी पे खाना कौन देता है? अच्छा कितने लोग? 100 लोग। अच्छा 100 लोगों का खाना, आप कहते हैं तो 100 या 10 के हिसाब से करके चलो, इनको कोई 10,000 कुछ इस तरह चाहिए होगा। वो नहीं होटल से पता किए ना तो वो कह रहे हैं कि पर हेड 3,000 रुपया। एक बेवा औरत यतीम बच्ची के लिए लड़की को लेने आ रहे हैं, इज्जत से आएंगे या ऐसे आएंगे? खाना खिला रही है और 2-3 लाख रुपए का बिल दे रही है कि जी ये बस रात के खाने के पैसे आप लोग दिलवा दें। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पारा आपको इससे रोक रहा है। आज उम्मत मुस्लिम बिल्कुल डी एक्सेल हुई हुई है, साइकिल का पहिया चलता रहता है ठीक, जरा सा वो उसके ऊपर से उतर जाए ना जो उसकी चेन होती है, पूरी साइकिल बेकार। आज हमारे मुल्कों के मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अपने मकसद से हटे हुए हैं, सोशलाइजिंग। और कहते कि जो कर सकता है ना वो क्या कह के करता है, रिश्तेदारी है जी, सिला रहमी है जी, खाना खिला रहे हैं पिला रहे हैं जी, फायदा ही हो रहा है ना, चले लोगों को हम बिजनेस दे रहे हैं तो बाकियों का क्या होगा? आप शादियों में इतनी धूमधाम कर लेंगे तो बाकियों का रेट नहीं ऊपर चढ़ जाता? तो जरा से इस फ्लॉन्ट करने के कल्चर, बतर वाले कल्चर और दिखावे के लिए खर्च को जहन से निकाल दें, क्योंकि ये सारा पारा इसी पे घूम रहा है। यहाँ से तदब्बर और अमल की बातें लेते हैं आयत 69 से ऑनवर्ड। अल्लाह तआला से अपने लिए ईमान के महबूब होने की और नाफरमानी को नापसंदीदा बनाने की दुआ करें। आज तो ये दुआ मांग ही लें कि अल्लाह मुझे ईमान प्यारा हो जाए और नाफरमानियाँ बुरी हो जाए, नेकियों से मोहब्बत हो जाए, गुनाहों से मुझे नफरत हो जाए, सितारों की चालों या शोभदा बाजों से गैब जानने वालों को नसीहत कीजिए, अपने ऊपर अल्लाह की 5 नेमतों को याद करके शुक्र के सजदे कीजिए, कुरान से रहनुमाई, सुन्नत इलाही है कि वो अपने नेक बंदों को निजात देता है और दीन के दुश्मनों को हलाक करता है, आखरत के दिन को ना मानने वाले को गुनाह करते वक्त खौफे खुदा नहीं रहता, इख्तलाफ और तफरके से बचने के लिए कुरान की पैरवी कीजिए, गौर व फिक्र, बाज़ औक़ात जुबान की वजह से मुसीबत आती है, इसकी हिफाजत कीजिए, दुआओं की कबूलियत का इन्हिसार इखलास पे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत तमाम मखलूक के लिए थी, आप जानवरों पे भी रहम फरमाते थे इंसानों पे भी, अजाब में ताखीर अल्लाह ताला की रहमत का नतीजा है, यानी अल्लाह ताला मौका दे रहा होता है कि अभी भी बच जाओ अभी भी बच जाओ, और इन सारी चीज़ों को जो लेके चल रहे हैं क्या करें कैसे दुनिया में जिए ये किससे पता चलता है? इस कुरान से। इसीलिए आगे देखिए आयत 76, इन्नहाज़ल कुरान, यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने इन अक्सर चीज़ों का बयान कर रहा है जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं, और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हिदायत और रहमत है, आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा, वह अल अजीज़ अल हलीम, वो बहुत ही गालिब और दाना है। बस आप यकीनन अल्लाह ही पर भरोसा रखिए, यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं, यकीनन आप ना तो मुर्दों को सुना सकते और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते, जबकि वो पीठ फेरे रू गर्दा यानी मुंह फेर कर जा रहे हो, और ना पंदों को इनकी गुमराही से हटाकर रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो सिर्फ इन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं, फिर वो फरमाबरदार हो जाते हैं। हाईलाइट कर लें, निशानी कयामत के करीब की इस आयत में मौजूद है। जब इनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा और हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करता होगा, और वो बात क्या करेगा, ये जुमला हाईलाइट कर लीजिए, अन्नास का नुबिया याति नला योकिनोन, कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे और आज अपनी आंख से देख रहे हैं कि वो वादा पूरा हुआ। और कहते हैं कि ये वो वक्त होगा जब दुनिया में लोग एक दूसरे को बुराई से रोकना छोड़ देंगे और भलाई का हुक्म देंगे, तो अल्लाह इस जानवर को निकाल कर इससे ये काम लेगा। अल्लाह को ना आपकी ज़रूरत है ना मेरी, ना मेरे सुनाने की ना आपके सुनने की। मैं भी रिजेंटमेंट के साथ टूट जाऊँ और आप भी चले जाएँ गुस्से में, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह की इस किताब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कुर्सियाँ खाली हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फरिश्ते आ जाएंगे, हमसे अच्छी मखलूक आएगी। यह आपका मेरा अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन तरीके से वादा करना, कमिट करना, ये अल्लाह ने हम पे एहसान किया है। इसलिए इस सारे कुरान को पढ़ते वक्त अपने आप को सामने रख के कहा करें कि अल्लाह मुझे बदल दे, अल्लाह थक गई हूँ, अब मुझे बदल दे। मैं दुनिया के पीछे भाग भाग के थक गई हूँ। एक सिस्टर है हमारे पास, तो वो कहती हैं कि मैंने उमरा किया था एक इस नीयत को दिल में रख के कि अल्लाह मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। अब ये उनका अपना अमल है, आप भी अपनी दुआ में शामिल कर लें। किसी ने कहा कि मुझे शॉपिंग का क्रेज था, क्रेविंग होती थी, जैसे खुदगुदी होती ना हाथों में ख्वाहिश, सिर्फ खर्च करने का शौक था। आके चीजें किधर पड़ी हैं कोई नहीं पता, रुल रही होती हैं बाद में, एक दफा पहन लो तो देखिए वो जोड़ा बोझ बनता है कि अब इसको फेंकना किधर है, करूँ क्या इसका। तो मैंने उमरा किया, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे दिल से चीज़ों की मोहब्बत निकाल दें। तो आप ही चुन चुन के एक एक चीज़ जो आपको लगती है ना कि आपको मकसद से रोक रही है, हलाल हराम की बात नहीं है, मकसद। हाँ, अगर आप दुनिया को समेटते रहे, लपेटते रहे, अब रज़ाइयाँ निकाल रहे, अब धूप लगवा रहे, अब गर्मी सर्दी, आपके जहेज का सामान अभी तक आपके सर पे चढ़ा हुआ है, तो करते रहिए, फिर इन्हीं की गुलामी करें। आप खुद चूज़ कीजिए आपको किसकी गुलामी करनी है, आपको किसकी जॉब करनी है। आपके हस्बैंड को मिनिस्ट्री की जॉब मिल जाए, या आप किसी के हस्बैंड को कोई और छोटा मोटा काम करना मिल जाए, किसी आम सी चीज़ पे, किसी ग्रोसरी स्टोर पे उसको कैशियर पे खड़ा करना पड़े, किसकी जॉब को लेगा, वो पे को भी नहीं देखेगा, वो कहेगा मिनिस्ट्री है इधर, उसकी जॉब है। बंदे को पैसा ही नहीं हर चीज़ चाहिए होती, उसको इज्जत और ऑनर भी चाहिए होती है। अल्लाह सुबहाना तआला इन सारी आयतों में हमारे दिल को दुनिया से उठाकर आखरत की तरफ मोड़ रहे हैं। कैसे? और जिस दिन हम हर उम्मत में से इन लोगों के गिरोह को जो हमारी आयतों को झुटलाते थे खेर खार कर लाएंगे, फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे। जब सब के सब आप पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने मेरी आयत को बावजूद इसके कि तुम्हें इनका पूरा इल्म ना था क्यों झुटलाया, यानी कम इल्म के साथ इल्म की बातें झुटलाते रह गए। और ये भी बतलाओ कि तुम क्या कर रहे थे, बस अब इसके कि उन्होंने जुल्म किया था इन पर बात जम जाएगी। फहम ला यंतकून, इसको हाईलाइट करें, फिर वो कुछ ना बोल सकेंगे, इनकी बोलतियां बंद हो जाएंगी। बड़ी जुबानें हक के खिलाफ चलती थी, खूब बातें करते थे, लोगों पे बातें छाँटते थे, अल्लाह पे छोड़ते थे, अल्लाह ताला कहेगा उस दिन बिल्कुल गूंगे बन के बैठ जाएंगे। इसलिए अब इनको जरा कायनात पे गौर व फिक्र कराओ कि रब ने ये कायनात कितनी खूबसूरत बनाई। अलम यरौ अन्ना जअलना लैला लियस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा, क्या वो नहीं देख रहे कि हमने रात को इसलिए बनाया कि वो इसमें आराम हासिल कर ले और दिन को हमने दिखलाने वाला बना दिया। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान और यकीन रखते हैं। कितनी बड़ी निशानी है, अभी बाहर जाकर देखे सड़क पे पड़ा हुआ तिनका भी दिखता है। 7-8 घंटे गुजरेंगे अंधेरा, कभी अक्ल से सोचे यकीन नहीं आता, कौन पहिया घुमाकर इतनी रोशनी को काले अंधेरे में डाल देता है। अल्लाह बता रहा है कि इस जिंदगी के पहिए को, व्हील ऑफ दी लाइफ, अपने इस लाइफ साइकिल में अगर आज तुम्हारी जिंदगी में रोशनी है, दौलत है, माल है, तो फिक्र करो कल तुम्हारा सब छिन सकता है, बैंकरप्ट नहीं हो जाते, वो रातों रात टावर गिर के नीचे नहीं पड़ गए, प्रॉपर्टी के सारे रेट नहीं नीचे गिर गए। बैंकरप्सीज हुई, लोगों को घरों से निकालकर जेलों में नहीं डाल दिया गया, ये है, ये इन सारी आयतों में निशानी है कि दुनिया में अरूज और जवाल चलता रहेगा। आज अच्छे दिन है तो अल्लाह के बने रहो, अगर किसी अंधेरे में चले गए हो तो अल्लाह के बने रहो, और अपनी जात को पीछे करके अल्लाह के रास्ते के अंदर निकल कर अल्लाह की मर्जी को पहचानो और दुनिया में उसके पैगाम को आम कर दो। अब क्यामत का मंजर, व यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर फूका जाएगा तो सब के सब आसमानों वाले और जमीन वाले घबरा उठेंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे, और सारे के सारे आजीज व पस्त होकर इसके सामने हाजिर होंगे, और आप पहाड़ों को देखकर अपनी जगह जमे हुए ख्याल करेंगे, लेकिन वो भी बादल की तरह उड़ते फिर जाएंगे। कलेहनिल मनफूश, क्यामत के मंजरों में एक मंजर 30वें पारे में आप पढ़ेंगे, पहाड़ धुमकी हुई रुई की तरह उड़ेंगे, इतना बड़ा धमाका कि पहाड़ धुनक जाएंगे तो इंसानों का क्या हाल होगा। ये है सनत अल्लाह की, जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, जो कुछ तुम करते हो इससे वो बाखबर है। फिर क्या होगा क्यामत के दिन, मन जा बिल हसनति फलहु खैर मिन्हा, जो शख्स नेक अमल लाएगा उसे उससे बेहतर बदला मिलेगा, और वो उस दिन घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई लेकर आएंगे और ओंधे मुंह आँख में झोंक दिए जाएंगे, सिर्फ वही बदला दिए जाओगे जो तुम करते रहे हो। कितनी फिक्र होनी चाहिए इसकी हमें, कितना गम होना चाहिए इस बात का कि क्यामत के दिन जब हमारे नामे अमाल खुलें तो हम परेशान ना हों, हम इस तरीके से अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना हो कि अल्लाह तेरी दी हुई दुनिया की नेमतों को तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करके आ गए। अब नबी सल्लम को जो मैसेज था, आप देखिए मोहम्मद अरबी में हम सुन रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने लिए उस दीन को पसंद किया जो गारे हिरा में उनको मिला। आज यहाँ पर मैं भी इस पारे के साथ इसी चीज को महसूस करें कि जितनी भी दुनिया अल्लाह दे उतना ज्यादा अल्लाह के बंदे बन जाइए, जितना ज्यादा हम अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते जाएंगे ना, आपको दुनिया उतनी मिलेगी। ये अंदर की बात है, ये हर एक को बताने वाली नहीं। आप सोचते हैं ना कि दुनिया से अगर हम दूर होंगे तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो होगा, दुनिया और मिलेगी। तितली कभी पकड़ी हो, कोशिश करें, भागती रहती है, इधर जाए उड़ती, उधर उड़ती उड़ती, आप कहते मुझे नहीं पकड़नी, आप बाग में पड़े हुए बेंच पे बैठ गए, थोड़ी देर पर कोई तितली आके आपके हाथ में बैठ जाती। ये दुनिया की तितलियों के पीछे मच भागे। हाँ पर बंदा कहाँ पर है, नमाजें जा रही हैं, मकसद जा रहा है, वक्त जाया कर रहे हैं, और हम उस दिन जब कब्र में डाल दिए जाएंगे ना, उस दिन हमें एहसास होगा कि खाली हाथ आए हैं, कुछ साथ नहीं आया। करो कि अल्लाह के बंदे बनो, इसीलिए कहा इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बल्दा, मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसने इसे हुरमत वाला बनाया है, जिसकी मलकियत हर चीज है, और मुझे ये भी फरमाया गया है कि मैं फरमा बरदारों में से हो जाऊं। अल्लाह हमें भी फरमा बरदार बना दे। वनातलुअल कुरआन, और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, जो राह रास पर आ जाए वो अपने नफे के लिए राह रास पर आएगा, और जो बहक जाए तो कह दीजिए कि मैं सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं, वो अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे, और जो कुछ तुम करते हो इससे आप करब गाफिल नहीं। सोचिए 2 सेकेंड, मैं जो करती हूँ अल्लाह को सब पता है, पकड़ता क्यों नहीं, क्योंकि मोहलत देता है, उसके पास इंसान के लिए बहुत वक्त है, अल्लाह के पास सब्र भी बहुत है। तो क्या पता चला सूरत के एंड पे आपको मुझे, जरा सा गौर व फिक्र कर लेते हैं आयत नंबर 76 पे। पहले अल्लाह ताला से कुरान को अपने हक में रहमत और दलील बनाने की दुआ करें। आज से एक दुआ करिए कि अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बनाना, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाना। ये इस जगह पे दौरे कुरान का होना यहाँ वालों के लिए हुज्जत है, हक में बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और खिलाफ बन गई तो क्या बनेंगे, क्या पकड़ होगी। फिर कोई नेक काम करें और अल्लाह से अजर में इजाफे की दुआ करें, कुरान की कोई सूरत गौर व फिक्र के साथ समझ कर पढ़ें, कुरान पाक से रहनुमाई, कुरान लोगों के लिए हिदायत और इन पर रहमत का जरिए। एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो किसी मसले में बगैर इल्म के बात ना करे, जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो इसके लिए कुरान को सुन लेना ही काफी होता है। गौर व फिक्र, कुरान सब इंसानों के लिए रहमत है, लेकिन इससे हकीकी फायदा सिर्फ मोमिन लेते हैं। कुरान की नसीहतों से मुंह फेरने वाले मुर्दों की मानिंद है, क्योंकि दिले मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्द कोहन का चारा। अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज में कोई ना कोई हिकमत है, नेक अमल और कौल और जिक्र से अल्लाह तआला की रजा पाने की कोशिश कीजिए, यानी अल्लाह की रजा पाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। तो क्या पता चला, सूरत नमल एक बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ पूरी हुई कि जिंदगी का मकसद रब की रजा, नमाज का मकसद रब की रजा, घर के काम करने का मकसद रब की रजा। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे।